कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु तेरे जाऊं कहां, बिन तेरे जाऊं कहां।
ओम शांति। भारत के शास्त्रों में दो पंछियों की एक कहानी है। दो तितर किसी समुद्र के पास रहते थे, पति पत्नी। और वो दो पंछी एक दिन सागर से कहते हैं कि ये हमारे अंडे हैं, तुम इन्हें संभाल के रखना, हम कहीं दूर जा रहे हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, पर ध्यान से रखना ये दोनों हमारे अंडे, अगर इनको कुछ हुआ तो देखना, नहीं तो हम तुमको ही सुखा देंगे। और वो तो पंछी उड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब आते हैं और देखते हैं तो उनको दिखता है कि वो अंडे है ही नहीं। सागर से पूछता है तो सागर कहता है मुझे भी नहीं पता कहाँ चले गए। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम तुम्हें अभी सुखा देंगे। और वो दोनों पंछी अपनी चोंच से पानी निकालना चालू करते हैं। सागर विशाल है, विराट है, महान है, और उनको देखकर बहुत से साथी उनके उनको साथ देने के लिए आ जाते हैं, और बहुत सारे पक्षी मिलकर सागर को सुखाने की चेष्टा करते हैं। दिखाया गया है कि गरुड़ पक्षी वहां से गुजर रहा है और वो ये अद्भुत दृश्य देखता है और उन पंछियों को पूछता है, आप लोग क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं, ऐसी ऐसी बात हुई इसलिए हम इस सागर को सुखा रहे हैं, सारा पानी खाली कर देंगे इसका। वो गरुड़ पक्षी बहुत हंसता है, ये कैसी मूर्ता है, सागर देखो कैसा है, पूरा जीवन भी लगा लो तो भी शायद ये पूरा नहीं होगा, ये काम अधूरा ही रहेगा। पर वो पक्षी कहते हैं, नहीं, हम करके दिखाएंगे, हमारा दृढ़ संकल्प है। और उस गरुड़ को थोड़ी सी दया आ जाती है और दिखाया है वो विष्णु जी के पास जाता है और कहता है कि कैसे मूर्ख ही पक्षी है, पंछी है, सागर को सुखाने चले हैं। तो विष्णु उनको समझाते हैं, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, क्योंकि ऐसा कोई अद्भुत व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे संसार में हरेक के मन में अज्ञान का समुंदर है, अगर इस अज्ञान के समुंदर को खाली करना है तो बूंद बूंद से ही किया जा सकता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे ही हो सकता है। इसलिए ये जो दो पक्षी जो कुछ कर रहे हैं इनको करने दो, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है। परंतु वो गरुड़ विनती करता है तो दिखाया है कि विष्णु कहते हैं कि मैं आदेश दे दूंगा समुद्र को कि इनके वो दो अंडे दे दे, पर समुद्र कहता है वो अब मेरे पास है नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसी कुछ मनगढ़ंत सी कहानी है। और फिर किसी ना किसी प्रकार से वो सागर वो दो अंडे वापस दे देता है। कहने का भाव, हर मन में एक सागर है और वो सागर है अज्ञान का सागर। उस अज्ञान के सागर को खाली करना है और ज्ञान के सागर से मन को भरना है, और ये कार्य बहुत बड़ा है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है emptying the mind, मन को खाली करना। जेन फिलॉसॉफी में इसे कहा जाता है emptying the cup। जैसे एक बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विषय फिलोसोफर, प्रकांड पंडित, दार्शनिक एक बार एक जैन मोनेस्ट्री में प्रवेश करता है। जैन एक शाखा है बौद्ध धर्म की, जिनका मुख्य जिनकी मुख्य साधना केवल ध्यान है बस। तो वो व्यक्ति उस जैन मास्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे जेन क्या है ये सीखना है। वो जेन मास्टर पूछता है कि मैंने सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, कुछ अपने ज्ञान के विषय में बताओ। तो वो अपना ज्ञान सुनाना चालू करता है, इतना सुनाना चालू करता है, एक घंटे तक ज्ञान सुनाते रहता है। और फिर वो ये भी कहता है कि जेन के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता है, और फिर वो भी सुनाने लगता है। और ये गुरु चुपचाप सुनते रहता है, सुनते रहता है। कहता है चाय पियोगे? वो कहता है हाँ। शिष्य जाके चाय लेके आते हैं, वो जेन मास्टर उसके कप में चाय डालने लगता है। चाय का कप भर जाता है, फिर भी डालते रहता है डालते रहता है, टेबल पर चाय आ जाती है, उसके कपड़े पर गिरती है। वो कहता है ये क्या कर रहे हो, रुको, गुस्सा करता है। तब ज़ेन मास्टर उससे कहता है तुम यहां पर ज्ञान लेने आए हो, प्रश्नों से भर कर आए हो, पर तुम कर क्या रहे हो, अपने ही प्री कंसीव्ड आइडियाज, पूर्व निर्धारित आइडियाज, उसी से भरे हुए इतने हो, जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं करोगे नया ज्ञान तुम में नहीं भरेगा। Emptying the mind, emptying the cup. हिंदी में कहावत है खाली दिमाग, पर आज हम चर्चा करेंगे खाली दिमाग भगवान का घर, इस विषय पर, खाली दिमाग भगवान का घर ऐसा भी कहा जाता है। हमारे मन में सागर भरा है, जन जन का, इतनी बातें उसमें भरी है, इतनी बातें उसमें भरी है, जब तक इसको खाली नहीं करेंगे नया कुछ भी नहीं भर सकता उसमें। तो मन को खाली करना है, तीन प्रश्न है, तीन या चार। पहला, मन किस किस से भरा है? दूसरा, उसे खाली कैसे करें? और तीसरा, खाली मन की परिभाषा क्या है? खाली मन किसे कहते हैं? The empty mind, the boatless boat। इस ज्ञान मार्ग में जब भी कोई आता है अपने साथ एक संसार लेकर आता है, पुरानी यादें, बचपन की यादें, जीवन में हुई घटनाएं, दर्द, दुख, पीड़ा, बहुत कुछ। और हर आत्मा कहां से इस ज्ञान को चालू करती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपनी यात्रा कहां से चालू की है? तो सबसे पहला प्रश्न है, इस मन में क्या क्या भरा है जो हमको खाली करना है। जब तक इस मन को खाली नहीं किया जाए तब तक ये भगवान का घर नहीं बन सकता। दूसरा प्रश्न बताया कैसे खाली करें, और तीसरा प्रश्न है the empty mind, इसकी क्या निशानियां हैं। सबसे पहला प्रश्न, मन किस किस से भरा है? ये हर एक की अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, जो हर दिन प्रातः काल अपने आप को देखना है कि मैं किस से भरा हूं। सबसे बड़ी बात तो हम देहभान से भरे हैं। जितना हम समझते हैं हम में देहभान है, उससे वो हम में कई गुना अधिक है। स्मृति अर्थात फायदा, विस्मृति अर्थात घाटा। एक सेकंड में फायदा, एक सेकंड में घाटा। देहधारी से बात कर रहे और ये भूल गए कि आत्मा है, फायदा या नुकसान? नुकसान। कूट कूट कर भरा है, सागर है, और हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस पक्षी के जैसे प्रयत्न कर रहे हैं, एक बूंद ली बाहर निकाल, और थोड़ी सी बूंदें निकालने के बाद हम सोचते हैं हमने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, पर इस मन में देहभान का सागर छिपा है और उसके रूप बहुत सूक्ष्म है। अचानक दुख की महसूसता होना देहभान है। हर व्यक्ति अपनी एक इमेज बनाना चाहता है और वो चाहता है कि इस इमेज को सभी स्वीकार करें, और जब लोग उस इमेज के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तब उसे दुख होता है, और फिर वो एक अगला प्रयत्न करता है अपनी उस इमेज को फिर से ठीक करने का, किनकी नजरों में, उनकी जो उसके विरोध में है, और इसी द्वंद में जीवन गुजर जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी दुख होना अर्थात देहभान है, किसी भी तरह का कोई भी पश्चाताप होना अर्थात जरूर कोई विकर्म हुआ है, और बार बार गलतियां, भूले, गफलत, विकर्म करते करते आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा, हम भरे हैं ममता और अहमता। कहा जाता है ये दो रस्सियां है जो बांध के रखती है। हर व्यक्ति का किसी न किसी दूसरे व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में मोह है। आज सुबह का वरदान क्या था? लगाव, किसी को किसी की देह में लगाव है, किसी को किसी के विशेषता में लगाव है, किसी के गुणों में लगाव है, और ये विस्मृति है कि ये दिए किसने उसको। व्यक्तियों की यादें हैं बुद्धि में, और मोह आत्मा को बहुत कमजोर कर देता है, उसकी पावर कम कर देता है। यदि अध्यात्म के मार्ग में बहुत पावरफुल बनना है तो सूक्ष्मते सूक्ष्म मोह के बंधन को हटा देना पड़ेगा, और एक एक बंधन को हटाने में दर्द होगा। जीवन में आने वाली जो भी परिस्थिति जितनी दर्दनाक होगी उसमें उतना ही कल्याण छिपा होगा। इस वाक्य को लिख के रखना है अपने पास। जितनी परिस्थिति दर्दनाक, जो हम सोच ही नहीं सकते थे ऐसा भी हो सकता है, उस दर्द में उतना ही भारी कल्याण छिपा हुआ है। पर वो कल्याण उस समय बिल्कुल नजर नहीं आता है, उसको भी नजर नहीं आता है जो इसे जानता है, क्योंकि उस समय विस्मृत हो जाता है। जितना अधिक से अधिक मोह व्यक्तियों में, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बहुत दर्द, पर उसके मरने के बाद ही समझ में आता है कि अच्छा ही हुआ, हो गया। जितने जल्दी आत्मा एक एक बंधन से मुक्त हो जाए उतना अच्छा है उसके लिए। एक रीति से ममता, दूसरा अहमता, मैं का ही विस्तार है सारा। आत्मा मैं से भरी है, उसको खाली करना है। तीसरा, परचिंतन, परमत और परदर्शन से भरी है। हमारे अपने ओरिजिनल बहुत कम मत है, विचार है, हमने दूसरों से उधार लिए है विचार, वर्ड ऑफ माउथ, फैली है बातें, जो उसने कहा उसको मान लिया, जो उसने सुनाया उसको मान लिया, इसने जो बताया उसको स्वीकार कर लिया। हमने उस पर अपने रीति से कभी नहीं सोचे। हमारे मत पर आधारित है, पर से बने हुए, और इस संगठन में अधिकतर समय ब्राह्मण एक दूसरों को देखने में ही बिताते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया। पर चिंतन पर दर्शन पतन की जड़ है, सभी जानते हैं, फिर भी आपस में मिलते हैं तो यहां वहां की बातें करते हैं, इसने क्या किया उसने क्या किया। अर्थात बुद्धि में उसी का चिंतन चल रहा है। इससे अपने आप को खाली करना है। खाली दिमाग ही भगवान का घर होगा। चौथा, कुछ आदतें और कुछ संस्कारों से भरा है। झूठ सबसे पहला, तो हम अगर अपने झूठ को देखें तो छोटे छोटे झूठ भरे हैं हमें। व्यक्ति है कहां और फोन पर बताता कहां है, छोटे छोटे झूठ है, जिसको हम समझते हैं ये पाप की श्रेणी में नहीं है। आटे में नमक वाले पाप, जैसे मच्छर मारना पाप है क्या? नहीं। महात्मा बुद्ध से प्रश्न पूछा था किसी ने, सन्यासी घूमते रहते थे ना जंगलों में, मच्छर ही मच्छर, क्या ये पाप है, आप अहिंसा के बारे में बताते हो? उन्होंने कहा था है, है, और बहुत छोटा है, पर है तो जरूर। हमारी लौकिक माता जी है, उन्होंने कभी कोई मच्छर नहीं मारा आज तक, वो ऐसे करती है केवल, कभी नहीं मारती है, कुछ भी हो जाए मारेगी नहीं, कभी भी, कभी नहीं, कितना भी काटा इसको ऐसे करेगी, कुछ करेगी, मारेगी नहीं उसको कभी भी। तो झूठ। दूसरा, बहानेबाजी। तीसरा, गफलत, कोई बहुत बड़ी भूल और बार बार भूले करने की आदत। ये संस्कार पड़ गया है। चौथा, चोरी। क्या चोरी करते हैं ब्राह्मण? समय की चोरी कर ले तो हो भाग्य, चोरी चोरी, किसी का मोबाइल पड़ा है देखते हैं क्या है, किसी की पर्स पड़ी है, बैग पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा है जो हमें पता नहीं किसका है, वो ले लेते, ये समझ कर कि हमारा ही होगा या अपना ही किसी का है, चप्पल, परिवार की भावना, बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेनी, कुछ भी हो वो, छोटे से छोटा, चाहे कितना ही नजदीक का व्यक्ति हो, फिर भी जैसे किसी ने हमको कुछ गिफ्ट दिया, एक वस्तु, और हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहते और हम बहुत नजदीक है दोनों, बहुत नजदीक, और हमें जो गिफ्ट मिली है वो हमारे साथ जो व्यक्ति है उसने किसी तीसरे को दे दी बिना हमसे पूछे, ये समझकर कि अपनी है, तो चलो दोनों कुछ बोलेंगे तो नहीं, पर कुछ तो होगा दरार थोड़ी सी, हर एक व्यक्ति अपनी मालकियत में जीता है, हर एक उसे अंदर से बाहर से भले कुछ ना कहे पर अंदर से फील तो होता है हर एक को। इसके लिए जितना हो सके अपनी वस्तु में आप स्वयं ही प्रयोग करें, अपनी अपनी ही वस्तु का प्रयोग करें तो बहुत सारी आदतों से हम भरे। अपनी ही आदतों को आज बाबा ने कहा एग्जामिन, जांच करो कितना बाप को याद कर। तो जांच केवल वही नहीं है, बहुत सारी जांच है। और जांच कैसे की जाती है? किसी स्कूल में कोई इंस्पेक्टर आता है तो कैसी जांच करता है? किसी कंपनी में कोई फूड इंस्पेक्टर या इस तरह के लोग आते हैं, एक एक चीज देखते हैं। वो चीज देखेंगे जो किसी ने नहीं देखी। सफाई वाले आए, बीच में आए थे सर्टिफिकेट देने, एक दिन का एग्जामिनेशन था। अगर आए तो ये सोफा जो है उसके नीचे हाथ निकल, ये देखो कचरा, ऐसे ही एग्जामिनेशन करते हैं। जहां कोई नहीं हाथ लगाता है वहां हाथ लगा के कहते देखो कचरा कितना है, सफाई ठीक से नहीं की है। स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन अपनी। इस मन में इतने खाने हैं, इतने कोने हैं, इतनी सुरंगे हैं, इतनी परते हैं, इतनी लहरें हैं। हम ही शायद अपने आप को नहीं समझ पाए इतना भरा है इसमें। बाकी जन्मों का छोड़ दो, इसी जन्म का ले लो, इस जन्म का भी, बचपन का सारा छोड़ दो, ब्राह्मण जन्म का ही ले लो। जो आदतें थी नहीं, यहां आने के बाद बनी, अच्छी वाली भी और बुरी भी, सब यहीं बनी है। इन सब आदतों से स्वयं को खाली करना है, तब तक ये घर, ये मन भगवान का घर नहीं बनेगा। इसलिए जैसे ही हमको दिखाई देता है कि किसी एक व्यक्ति में कोई अच्छी आदत है, तुरंत उससे वो आदत ग्रहण कर लेनी। उसकी 10 बातें बिल्कुल ठीक नहीं है पर वो एक बात बहुत ही अच्छी है, वो 10 बातों को भुलाकर उसे एक बात पर फोकस करना है, क्योंकि उसमें वो बहुत अच्छी चीज है। हमारा सारी दिनचर्या ठीक है पर अमृत वेला कभी 3 कभी 3:30 कभी 4:15 कभी 4 कभी 4:30, और एक दूसरा एक भाई है बराबर 3:30 बजे उठता है, दिन भर भले जो करता है करे पर उसकी वो आदत में एकदम पक्का है, उससे वो सीखना है। तो नई आदतें, पुरानी जो भी आदतें हैं जो कि श्रीमत के विरुद्ध है, उससे अपने आप को खाली करना है। घंटों घंटों टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इसमें लगे रहते हैं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। आदतें, उसके बाद में विकार, गंदगी इस मन में भरी है। इन विकारों से मन को खाली करना है। रोज रोज मुरलियों में कितनी बातें आती है, आज भी बोला ना गधे का उदाहरण, कितना भी सजाओ फिर से वहीं जाता है। उसकी इतनी आदत पक्की है, इसलिए कहा अज्ञान का सागर है हमारे मन में, विकारों का सागर है मन में। एक विकार नहीं, एक ही विकार के 1000 रूप है, 1000 रूप एक विकार के, और वो हर अलग अलग समय अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग रूप से प्रकट होता है। कभी स्थूल जो जिसे विकार कहता है वो, और कभी अतिशय सूक्ष्म दृष्टि से, संकल्प से, स्वप्न में, भय भय किस चीज का भय है पता नहीं, पब्लिक ओपिनियन का भय, मीडिया इमेज का भय, प्रतिष्ठा का भय, ऐसा न हो जाए इसका भय, इन सब चीजों से आत्मा को खाली करना है, सभी विकारों से। उसके बाद में अगला पाप, ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप से आत्मा भरी हुई है। जानबूझकर कितनी बार श्रीपद को तोड़ा है आत्मा ने, उन आत्माओं ने जो ज्ञान में है, उन आत्माओं ने जो रोज मुरली सुनती है या सुनाती है, उन आत्माओं ने जिन्होंने शायद अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया इस यज्ञ में, क्योंकि संस्कार तो वही पुराने चल रहे हैं अभी भी, और वो कुछ कुछ संस्कार इतने सूक्ष्म है, इतने दबे हुए हैं कि दिखाई नहीं देते। उस व्यक्ति को भी नहीं पता ये मेरे संस्कार है, जब तक कोई दूसरा आके उसे बता ना दे कि तुम ऐसा भी करते हो। जैसे कोई व्यक्ति खर्राटे लेता है, उसको तो पता ही नहीं रहता है, पता कहां से चलता है। और दूसरा वाला कहे तुम खर्राटे ले रहे हो और उस पर गुस्सा करे, तुम ही ले रहे होंगे, हम तो कभी नहीं लेते, हम तो बहुत अच्छे। हर व्यक्ति ऐसा ही कहता है, उसे खुद ही पता नहीं है, क्योंकि जब वो कर रहा है तब वो बेहोश है, और जब वो होश में रहता है तब वो नहीं कर रहा है, और तब वो स्वीकार ही नहीं करता है। और किसी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करो तो जीवन भर की शत्रुता मोल ले लो। दादी जानकी ने कहा है, अगर इस ब्राह्मण जीवन में शत्रु बनाने हैं ब्राह्मण परिवार में, तो हर एक को उसकी गलतियां बताओ, जीवन भर का शत्रुता पक्की। किसी व्यक्ति को बता दो अमृत वेला तुम सो रहे थे, बस 10 दिन छोड़ेगा नहीं, फिर ढूंढेगा तुम कब सोते हो। ऐसे थोड़ी ना सहन कर लेगा कोई, इतना बड़ा हमारा अपमान हम सहन कर ले। पाप, जैसे हम संसार के लोगों के लिए कहते हैं, उनको अगर कहो कि तुम पतित हो तो खुश होते हैं क्या? चिढ़ते हैं वो। हाँ, पर कोई कहे कि हाँ मैं पतित हूं तो आशाएं जगती है कि हाँ तुम पावन बन सकते हो। अर्थात जब हमें यह आभास हो जाए कि हमारी दुर्गति हुई है, तभी सदगति का मार्ग खुलेगा। जब हमको ये पता चल जाए कि ब्राह्मण बनने के बाद भी हमसे ये सारे पाप हो गए हैं, संकल्प के तल पर मेंटल क्राइम्स, थॉट क्राइम्स हुए, संकल्पों में अपराध हुआ है, स्वप्न क्राइम हुए हैं, ड्रीम क्राइम्स, तब कहीं सदगति का मार्ग निकलेगा। पहले तो स्वीकार करना है, अगर कोई कहे और कोई बताए कि भाई तुम खर्राटे ले रहे थे, अच्छा ओके ठीक है, मैं क्या करूं अभी, तो मार्ग ढूंढेगा कैसे कम कर सकूं, डॉक्टर को मिलूं, किसको मिलूं, क्या करूं। तो छठवां पाप, पाप से आत्मा भरी है। अगला व्यर्थ, इतना व्यर्थ है, इतना व्यर्थ है, इतना व्यर्थ है उसके पास। डिस्कशन करने बैठ जाए तो पूरी सुबह अमृत वेला हो जाए, इतना व्यर्थ है, फिर भी किससे कहानियां खत्म नहीं होगी। अगला निगेटिव, ब्राह्मण बनने के बाद व्यक्ति के पास पॉजिटिव अनुभव बहुत सारे हैं, पर वो उसकी कभी भी चर्चा नहीं करता। चर्चा किसकी करता है? निगेटिव अनुभव की। ऐसे कितने ब्राह्मण होंगे जो आपस में मिलते और बात करते हैं, क्या भाग्य है कि हमको भगवान मिल गया, कितना बड़ा भाग्य है कि हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। कारोबार हो गया है, ये सब मुरली क्लास का क्लास पूरा हुआ, चलो ये काम पूरा हुआ, अभी नेक्स्ट, वो सेवा वो पूरी हुई, अभी नेक्स्ट, अगला अगला अगला। इंग्लिश कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कविता की परिभाषा, कविता अर्थात स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, स्वतः ही इतने शक्तिशाली भाव प्रकट हुए हैं कि वो बाहर अपने आप निकल रहे, इसको कहते हैं कविता। पर आज के युग में जो कविता है और जो गीत है वो वैसे नहीं है, वो शब्द जोड़े जाते हैं, झरना मरना। अब मरना के साथ वो जो गीत बना रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं, फिर सिंगर्स को ढूंढा जाता है, फिर वो गाते हैं, उसमें जान नहीं है क्योंकि वो जोड़े गए हैं पकड़ पकड़ के शब्दों को। तुकांत शब्द जिसको कहते हैं राइमिंग्स, उसमें जान नहीं है। उसी तरह ये सब भी, ये सब ब्राह्मण की दिनचर्या रूटीन सा हो गया है। उठना है, अमृत वेला किया, चलो काम पूरा हुआ, मुरली पूरा हो गया, काम पूरा हुआ, भोजन काम पूरा हो गया, सेवा में गया, डिपार्टमेंट किया, आगे। और सेम रूटीन चालू है कितने सालों से, उसमें ना कोई नवीनता है, कुछ नहीं। लास्ट संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 2। मनन करोगे तो टचिंग होगी, नई टचिंग। टचिंग होगी तो उमंग उत्साह होगा, उमंग उत्साह होगा तो सेवा में नवीनता आएगी, और नवीनता होगी तो सफलता होगी। सभी चीज का आधार है मनन। मनन ही तो खो गया है। आज की मुरली में कितनी अच्छी बात है, बेहद की डायरी, चिंतन करने का टॉपिक है। आज की मुरली में कितना अच्छा वाक्य है, देह बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें, वरदान की पहली लाइन, बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें। उठाओ उसको वहां से, एकांत में जाओ, बैठो और सोचो ये क्या है, क्या कह दिया है। विस्मृति में घाटा है, विस्मृति में घाटा है, विस्मृति में घाटा है, रिपीट 100 times, एक ही वाक्य, विस्मृति में घाटा है, विस्मृति में घाटा है, रिपीट करते करते अब चिंतन चलेगा कौन सा घाटा। अब आगे बढ़ाओ उसको, जब तक ये मनन नहीं होगा, नई टचिंग नहीं आएगी, जब तक नई टचिंग नहीं तब तक उमंग उत्साह नहीं, उमंग उत्साह नहीं नवीनता नहीं, और नवीनता नहीं तो सेवा में सफलता नहीं। लास्ट संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन डल हो गया है, कारोबार बस, उसमें कुछ स्पार्क नहीं है। स्पार्क करता चिंगारी, जान मरे मरे से, तो अगला पुरानी यादें, पुराने दर्द, पुरानी घटनाएं सब भरा है, सब याद है, 20 साल पहले जो हुआ था पूरी पूरी मेमोरी है उसकी, किसने क्या क्या हमसे गलत कहा था, अगर अभी पूछा जाए तो एक एक शब्द उसका सुना सकते हैं। मुरली अगर कहे कि वही 1 साल पहले जो मुरली चली थी उसका क्या था महावाक्य, महावाक्य बिल्कुल याद नहीं, पर उसी दिन उसी मुरली में बैठा हुआ जो बाजू वाला व्यक्ति था उसने कहा था जूते उधर करो, वो याद है। 2 साल पहले अब डायमंड हॉल में बैठे थे, बाबा की मुरली सुन रहे थे, क्या मुरली थी बिल्कुल याद नहीं, पर एक भाई ने आकर कहा था ये मेरी सीट है उठो, फिर दूसरी जगह जाके बैठे, दूसरी जगह जाके बैठे, दूसरे ने कहा ये मेरी है यहां से उठो, वहां से उठे, तीसरी जगह बैठे, वो तो कोई सेवाधारी आया उसने कहा तुम यहां कैसे आ गए, तुम्हारी जगह पीछे, ये VIP के लिए, ये भूला है, ये नहीं भूला है, भूल गया क्या, वो सामने भगवान था, उसने महावाक्य उच्चारित किए होते वो सब गया, वो कुछ भी याद नहीं है। ये सब आत्मा भरा है ये सब इसमें। ये सारी चीजें और बहुत हो सकती है, इतनी यहां रोकते हैं इसको। दूसरा प्रश्न पे आते हैं, खाली कैसे करें। सबसे पहला खाली करना, इसको अंग्रेजी में मनोविज्ञान में कहा जाता है कैथारसिस। कैथारसिस, कैथारसिस अर्थात जैसे कोई पेशेंट रहता है, इतना भरा है वो, उसको पूछा जाता है बताओ बताओ बताओ। कभी हिप्नोटिक रिग्रेशन में लेके जाते हैं, जैसे कोई एक आत्मा है, अचानक उसको मेमोरी लॉस हो गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, वो माँ बाप को नहीं पहचानती, कुछ भी याद नहीं। फिर उसको लिटाया जाता है, हिप्नोसिस सम्मोहन किया जाता है और उसको उस पॉइंट तक लिया जाता है कि तुमको यह क्या याद आ रहा है। वो कहती है मुझे याद आ रहा है मैं वहां थी और पीछे। वो कहती नहीं मैं नहीं जा सकती अभी और पीछे। एक सेशन नाउ, सेकंड सेशन अगले दिन फिर से पीछे जाओ, फिर से, फिर हाँ कहती हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और फिर उस पॉइंट तक और पीछे पीछे एकदम एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है वहां पर उसके साथ कि वो उस सम्मोहन की अवस्था में बोल देती है। और फिर जब निकलती है तो धीरे धीरे उसको पुराना याद आने लगता है। ये सारा जो है निकालना अंदर का, ये बहुत जरूरी है। जब तक अंदर का कचड़ा नहीं निकलेगा, नई ट्रीटमेंट नहीं चालू की जा सकती। तो यहां पर आत्मा में इतना कुछ भरा है, निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप है बाबा को सब कुछ बताना। दूसरी स्टेप है लिखना खत, लेटर। तीसरी स्टेप है डायरी लिखना। जो मन में आता है वो लिखो, ना स्पेलिंग की परवाह करो, ना ग्रामर की, ना ये कि इसमें अच्छा दिखना चाहिए। जब माइंड डिस्टर्ब है, भरा है बहुत चीजों से, जर्नलिंग, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सब लिखो सब लिखो, जो आ चाह रहा है सब लिखो, पूरा उसमें उड़ेल। खाली करना है क्योंकि भरा है बहुत। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करो। एकांत में जाओ जहां कोई नहीं है, छत में, और अपने आप से बातें करना चालू करो। जोर से करने की जरूरत नहीं, मन ही मन, मन ही मन अपने आप से बातें करना कि मैं ब्राह्मण जीवन में किस लक्ष्य से मधुबन में आया था, सेवा केंद्र में आया था, या किस लक्ष्य से ब्राह्मण बना था, बनी थी, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या इसलिए आए थे यहां। यही हो गया, हरि भजन रहेगा, लक्ष्य की विस्मृति हुई है, फिर से याद दिलाना है अपने आप को। ये सब करने में नहीं आता। एक साकार मुरली है, बाबा ने माताओं से बात की है, माता है क्या समझती हो, क्या केवल रोटी पकाने यहां आई हो या तपस्या करने। वैसे कुछ दिनों पहले बोला था बाबा ने, रोटी पकाते जब करते करते भी स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पांचवा, ज्ञान का चिंतन। अंदर इतना भरा है किचड़ा, पास्ट की यादें है, दर्दनाक खौफनाक यादें है, और उससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है। ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, रोज की मुरली से। उसको ऐसे पढ़ना है जैसे इसमें कोई चिंतन का एक टॉपिक है कोई, और इसके दो तीन ले लेना है और एकांत में जाओ, या फिर जो सेवाएं है उसके जाने से पहले ही सोच के जाओ कि ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे सोचना है। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा अमृत वेला टॉपिक्स निकालो, सोचो बारे उसके बारे में क्या भाषण देना है। मुरलियों में आया है सारा ना, कितनी बार आया होगा, यहां तक कहा है कि अमृत वेला भाषण लिखो। अमृत वेला केवल योग करने के लिए नहीं है, चिंतन के लिए भी है। इसलिए अमृत वेले का टाइम भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें चिंतन भी हो और योग भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम जो चिंतन हुआ होता है बहुत पावरफुल होता है, दिन भर का चिंतन इतना शक्तिशाली नहीं होता है। उस समय ही अपने आप को कोई काम दे देना है, ताकि थोड़ा जल्दी हम अमृत वेला चालू कर ले और फिर कुछ समय आधा घंटा चिंतन के लिए रखें। जितना जल्दी चालू करेंगे फिर आगे और टाइम मिलता है। बाकी सब संगठन का अमृत वेला पूरा होने से 4:45 तक हमारा चिंतन भी हो और योग भी अच्छा हो। तो पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, तभी होगा ये, नहीं तो नहीं होता। कोई सोचेंगे मैं 3:30 बजे उठता हूँ, स्नान विन करता हूँ, अमृत वेला बैठता हूँ और फिर योग, नहीं होगा। टाइम पीछे सरकाना पड़ेगा, वही तीव्र पुरुषार्थ है। अगला, योग बढ़ाना पड़ेगा चार्ट। जितना जितना अशरीरी बनेंगे आत्मा से चीजें डिलीट होगी, और सबसे ज्यादा डिलीट आत्मा से तभी होता है जब हम परमधाम की निराकारी अवस्था में बैठते हैं। सब विस्मृत हो जाता है, जो ब्रेन पर जो इंप्रेशंस है, न्यूरॉन्स, न्यूरोनल करेक्शंस हुए, सब टूट जाएंगे। फिर ऐसी कुछ बातें याद ही नहीं आएंगी, अच्छा हमको कुछ भी याद नहीं है, ऐसा हो जाए। जैसे किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और याददाश्त चली गई, कैसे करता है वो, कौन हो तुम, मुझे तो याद ही नहीं है। वैसे ऐसे हो जाए हमारी मेमोरी लॉस, कुछ कुछ चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं है, सब सब भूल गया। ऐसा शॉक, ऐसा झटका इधर आत्मा को परमधाम में लगाना है। लंबा समय वहीं स्थित रहना, नीचे आना ही नहीं। लास्ट संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1, बाप तुम्हारी आंखों में समाया है, तुम बाप की आंखों में समाए हो, तुम हो बिंदी, बिंदी हल्की होती है, बिंदी लाइट होती है, लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं बिंदी, बस कोई संकल्प नहीं, मैं निरसंकल्प आत्मा हूं। ये एक ही संकल्प रखना बस, कौन सा, कि मैं निरसंकल्प आत्मा, और लंबा समय वहां पे चिपके रहना, तो बहुत सारा भूलते जाएगा पुराना। अगला, सेवाओं में व्यस्त हो जाना, सेवाओं में अपने आप को झोंक देना, खाली नहीं रखना अपने आप को। खाली दिमाग किसका घर, शैतान का घर है ना, खाली दिमाग शैतान का घर है, ऐसी तो कहावत है, हमने उसको थोड़ी बदली है, वो दूसरी बात है। पर खाली मन है, क्या काम है आज, 2 घंटा सेवा कर ली, दिन भर क्या कुछ नहीं, बैठे तो क्या करेंगे, अच्छा वहां क्या बन रहा है आज, पांडवन में क्या है, किस डिपार्टमेंट में कहां क्या, ईटिंग एंड आउटिंग, बस दो ही काम रह जाते फिर, ईटिंग एंड आउटिंग। कौन सा स्थान रहा है जहां नहीं गए, वहां चलते शाउटिंग उसका परिणाम वो भी हो सकता है। तो जब व्यक्ति पुरुषार्थ और सारे चिंतन से मुक्त हो जाता है, तब वो ये सोचता है, अब पेट की आग को कैसे बुझाऊं, कहां क्या मिल रहा है, अच्छा कहां बन रहा है, कुछ वहां जाऊं बस। वो सबसे लास्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, सबसे लास्ट बात। इस शरीर को बहुत कम चीज चाहिए, जो उसमें डाली जा रही है वो बहुत ज्यादा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है उसको। योगी संकल्प शक्ति से अपने शरीर को चलाता है। ये सब चीजें बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है उसको। टेस्ट ही तो बंधन है एक। उसके बाद एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, प्रकृति का सानिध्य, लंबा लंबा समय प्रकृति के सानिध्य में रहना, प्रकृति को देखना, निहारना, पुराना सब भूलता जाएगा, अतीत पास्ट सब विस्मृत होते जाएगा। और जितना जितना जल्दी जिसको करो वो बहुत ज्यादा अच्छा। कैसे भी करके अपने आप को खाली करना है बस। अगला, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिस पर हमें बहुत विश्वास है, भरोसा है, उसको जाकर अपने मन की सारी बात बताना। पर वैसा ही व्यक्ति हो कि वही बंधन ना बन जाए, ये थोड़ा इसको लास्ट में रखा इसलिए हमने। जैसे एक बार बताया था ना, साधु सम्मेलन होता है, बड़े 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 महंत आते हैं, सब बैठते, बड़े बड़े भाषण देते हैं और कमरे में आते सोने के लिए। पहला साधु कहता है, आप लोगों से क्या छिपाना, अपने ही लोग हैं। वो कहता है, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य की पर भाषण दिए, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं खुद ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मुझे अभी भी वो इच्छाएं तृष्णाएं स्वप्न में आती रहती है, खींचती रहती है। दूसरा कहता है, मेरा भी तो यही हाल है, मैं तो हर लेक्चर में कहता हूँ ये पैसा मोह माया सब छोड़ो, पर जब तक वो लेक्चर से कितने पैसे आए गिनता नहीं, मुझे चैन नहीं मिलती। तीसरा कहता है, मैं तो हर लेक्चर में कहता हूँ ये पद प्रतिष्ठा कुछ काम की नहीं है, पर जब तक मुझे मान नहीं मिलता है मुझे मजा नहीं आता है। चौथा भागने लगता है, वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहता है मेरी तो बस एक ही आदत है, यहाँ की बात उधर। अब मैं कैसे रुकूं जब तक सारे मीडिया वालों को ना मिल लूं, मैं शांत नहीं होने वाला, मैं तो जा रहा हूं। जो कुछ सुना वो सब बता दूंगा सबको। एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, ये सब कुछ ये भी क्या करेगा, खाली करेगा। ये एक बताया, उसके बाद दूसरी पॉइंट हम बता रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति को बताना जो जिस पर विश्वास है, और वो व्यक्ति कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए, अनरिलेटेड होना चाहिए, दूर का होना चाहिए, ज्यादा नजदीक वाला नहीं चाहिए, क्योंकि नजदीक वालों के पहले ही अपने प्रति हमारे अपने इंप्रेशन है। इसलिए काउंसलर जो होता है ना वो नॉन जजमेंटल होता है। माँ बाप अपने बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाते हैं, वो क्या करता है, चार बातें सुनाता है बस और पैसे लेता है, पर वो नॉन जजमेंटल है। वो बातें माँ बाप भी सुना सकते हैं, परंतु उनको पहले ही पता है ये तो है ही नालायक, कभी नहीं कर सकेगा तू, उनकी पहले से ही फीडिंग हो चुकी है। इसलिए तो मन को खाली करना है कैसे भी करके, इतना जो भरा है वो। अगली विधि है टोटल समर्पण, बाबा के सामने समर्पित कर दो। ये ब्राह्मण जीवन है, यहां जन्म हुआ था, इतने साल हो गए हैं, इतने सालों में कोई खास प्रगति हुई नहीं है, हुई है थोड़ी हुई, फिर पीछे एक कदम आगे, 10 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 4 कदम पीछे, कभी कभी बहुत आगे, कभी कभी बिल्कुल नीचे। टोटल समर्पण करके पूछना है मैं क्या करूं, ये संस्कार मिटाने के लिए इतने प्रयास कर चुका हूं जितने आपने बोले, उसके बाद भी ये संस्कार वैसा के वैसा ही है, जरूर कुछ तो कमी है ज्ञान में, कहा ना ये सागर है अंदर विकारों का, अज्ञान का, व्यर्थ का, निगेटिव का, पाप का, इन सब को सुखाना है, बाहर खाली करना है, तो ये सब करना पड़ेगा प्रयत्न। अपवित्रता का उसमें एक और ऐड कर दो, अपवित्रता, आत्मा किससे भरी है, इंप्यूरिटी से, तो ये सारी चीजों से आत्म को खाली करना है। लास्ट प्रश्न था एम्प्टी माइंड किसे कहा जाएगा, एम्प्टी माइंड के लक्षण क्या है। पहला लक्षण है अवेक, जागृत, निरंतर जागरण की अवस्था है, निरंतर ये याद है ये संगम युग चल रहा है और मुझे पुरुषार्थ करना है, एक पल ऐसा नहीं कि जिसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है। निरंतर वैराग्य की अवस्था है अंदर से, कहीं कहीं पर आंख नहीं डूबती, किसी भी घर चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी बड़ी से बड़ी जगह चले जाओ, लोगों की आंखें डूबती है। ये पर्दा कितने का है, ये फ्लावर पॉट कहाँ से लाया, ये जैकेट कहाँ मिलता है, ये सब्जी कहाँ से मिली, एक्स्ट्रा है क्या? आके डूबती है चीजों में, हर चीज में आके डूबती है। किसी के घर जाओ तो आके डूबती है, हर चीज में आके डूबती है। हमको भी ऐसा हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब खलास होने वाला है। तो खाली मन अर्थात खाली खाली कर दिया है सब व्यर्थ से, अवेक्ट अवेस्ता है, दूसरा रिलैक्स्ड है, बहुत शीत रिलैक्स हो चुका है, पीसफुल है, पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली मन है, हल्का है, बहुत लाइटनेस है उसमें, और बाबा की याद है, बाबा की बहुत समीपता है, निरंतर उसकी मदद का अनुभव ऐसे कि जैसे हम उसी से जुड़े हुए हैं। हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहा है, ये उसके शब्द है, अमृत की धाराएं जो निकल रही है, स्रोत वो है, अनुभव निमित्त होने का, निमित्त भाव का, और अचल अडोल अवस्था है, वो कहीं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, और बहुत खुशी है अंदर ही, संतुष्टता, क्योंकि मन को खाली कर दिया है। इसलिए मन के पैटर्न को समझना है, मन ने हमको कब कब कैसे कैसे धोखा दिया, उसकी एक लिस्ट बनानी है कि कब कब मैंने सोचा ये करूं और वो किया और धोखा हो गया। बहुत चालबाज है मन, बहुत चालबाज, ट्रिक्स्टर, इतनी बार धोखा दिया है, हर बार एक अपनी नई चाल चलता है। कितना विश्वास करे, सोचते अभी विश्वास करता हूं, आज दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा दृढ़ करते हैं और गिरते हैं फिर से। अपने ही मन को समझना है, अपने मन की परतों को, अपने संबंधों को, विकारों को, कमजोरियों को, पाप को, विस्मृतियों को, गफलत को, भूलों को, क्यों हुआ ये? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये हुआ, महत्वपूर्ण है वो क्यों हुआ, उसका इन्वेस्टिगेट करना है डेप्थ में जाके। रोते नहीं बैठना है, हम तो ऐसे किए ऐसे किए ऐसे नहीं। हाँ, पर एक विधि और भी है वो खाली करने की, पश्चाताप करना सच्ची दिल से। क्या करना? पश्चाताप, ये हुआ है, एक्सेप्टेड, और अभी हम इसका पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित। और लास्ट विधि उसी में ले लो, दृढ़ संकल्प कि अभी इसके बाद फिर से नहीं होने देंगे। आज मुरली में 100% सर्टन है क्या? तुम्हारी विजय निश्चित है, आज सुबह की साकार मुरली है ना? तो वैसे मुरली से पॉइंट निकालने, खींच के दबोच के निकालने, ऐसे मुरीद चिपकाने। तो ऐसी सारी बातें हैं, खाली मन भगवान का घर बना देना है। जो घर विकारों से, व्यर्थ से, निगेटिव से पूरा खाली हो गया है, और वहां आप पॉजिटिविटी भरनी है, वहां आप पवित्रता भरनी है, वहां आप सत्कर्म भरने हैं, वहां आप चिंतन भरना है, योग भरना है, सेवा भरनी है, सुकर्म भरने हैं, समर्थ संकल्प भरने हैं, खुशियां भरनी है, खजाने भरने हैं, दुआएं भरने हैं, ये चीजों से भरना है मन को। और ये जितना निगेटिव व्यर्थ सब कुछ है, इसको खलास करना है। और ये बड़ा काम है, जैसे बताया कहानी में, समुद्र है वो, पर होगा, दृढ़ संकल्प से करते जाओ करते जाओ करते, ड्रॉप बाय ड्रॉप, फूरी फूरी तालाब। ओम शांति।
कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, ¶¶ दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, अधूरा मैं तेरे बिना, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।